deva satevaya. Om namo bhagavate askandat. Ishlok sankhya 1. Is adhyay ka naam hai. Bhagwan ko Aditi ka putra banna swikar. Sri Shuka vacha iti ukta sa aditi rajana shobharta kashyapena vai anu atishtata vratam idam dvadasaham atandrita. Ityukta sa diti rajan vacha. Sri Sukadev Goswami ji ne kaha iti is prakar ukta kahi jane par sa us aditi aditi ne rajan he raja shobharta apne pati kashyapena कश्यप मुनि से वही निसंदेह अनु इस प्रकार से अतिष्ठता संपन्न किया व्रतम इदम इस परम व्रत को द्वादश अहम 12 दिनों तक अतंद्रता आलस रहित होकर अनुवाद होता है श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद महाराज की जय। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हे राजा, इस प्रकार अपने पति कश्यप मुनि से सलाह पाकर अदिति ने आलस रहित होकर उनके आदेशों का दृढ़ता से पालन किया और पयोव्रत अनुष्ठान संपन्न किया। तात्पर्य, किसी भी प्रकार की उन्नति के लिए विशेषतः आध्यात्मिक जीवन में प्रामाणिक गुरु के आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन करना होता है। अदिति ने ऐसा किया। उन्होंने अपने पति तथा गुरु के आदेशों का दृढ़ता से पालन किया। वैदिक आदेशों से पुष्टि हुई कि यश देवी पराभक्त यथा देवी तथा गुरु। मनुष्य को गुरु पर पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए जो शिष्य के आध्यात्मिक जीवन की प्रगति में सहायक होता है। जब शिष्य स्वतंत्र रूप से सोचने लगता है और गुरु के आदेशों की परवाह नहीं करता तो वह असफल हो जाता है। यश प्रसाद अनुगति कुतोपि। अदिति ने अपने पति तथा गुरु के आदेशों का दृढ़ता से पालन किया और इस तरह वे सफल हो। तो बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है और आगे इसी कथा में आप देखेंगे किस तरह से भगवान अदिति की गर्ष प्रकट होते हैं। भगवान की बड़ी महानता है, बड़े कृपालु है। सुखदेव गोस्वामी महाराज करके हे राजा, इस प्रकार अपने पति कश्यप मुनि से सलाह पाकर अदिति ने आलस्य रहित होकर उनके आदेशों का दृढ़ता से पालन किया और पयोव्रत अनुष्ठान संपन्न किया। तो किस तरह से, जब इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि हम गृहस्थ जीवन में हैं तो गृहस्थ जीवन के जो आदर्श नियम बताए गए हैं उसका हमें पालन करना चाहिए। हर आश्रम के अपने अपने क्या होते हैं, नियम होते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। आप जिस आश्रम में हैं उस आश्रम के बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए और उसके अनुसार अपना क्या करना चाहिए, जीवन जीना चाहिए। आज का समाज इतना असभ्य हो गया है कि आश्रम का कोई परवाह ही नहीं है, समझ गए। ये सभ्यता लाने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। हम भक्तों लोग असभ्य हो गए, सच है कि नहीं सच? समाज बहुत गलत रास्ते पर चल रहा है, इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि भगवत गीता का वितरण करके, उसका दिव्य ज्ञान दे करके उन सबको सही रास्ते पर लाना चाहिए। क्योंकि आजकल लोग न भगवत गीता पढ़ सकते हैं तो 18,000 श्लोकों से पढ़े भागवतम कैसे पढ़ेंगे, राइट? सच है नहीं सच? कम से कम भगवत गीता पढ़े तभी तो उनका उद्धार हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद चाहते थे कि इसके द्वारा उनका जीवन सुधर सकता है। तो कश्यप मनु ने ही उनको सलाह दिया था अपनी पत्नी अदिति को कि आलस रहित होकर उनके आदेशों का पालन उन्होंने किया है। जो पयोव्रत व्रत होता है 12 दिन का होता है, लेकिन बड़ा कठिन होता है। वो 12 दिन हर दिन का अलग अलग बताया गया है। देखिए अदिति ने इतनी हिम्मत थी, उन्होंने कर दिया। और सतयुग की बात है, सतयुग की बात है, एक घटना कब की है? सतयुग, सतयुग में बड़ी कठिन तपस्या करनी पड़ती थी। जैसे प्रहलाद महाराज के पिताजी ने बड़ी कठिन तपस्या की थी, तब के लोग बड़े तपस्वी हुआ करते थे, अंगूठे पर खड़े होना और ठंडे पानी में प्रवेश कर जाना। देखो हम लोग ठंडा पानी टच नहीं करना चाहते, गीजर लगाते, लेकिन ठंडे पानी में प्रवेश कर जाना बहुत तपस्या। तो वही भगवान हम पर कृपा करके आसान कर दिया कलयुग। आईने की आप प्रौद्योगिकी पयोव्रत की जो विधि है इसमें बताया कि पहले दिन क्या करना चाहिए, दूसरे दिन क्या करना चाहिए, तीसरे दिन क्या। अब इसका मतलब नहीं है कि आप रुक जाइए और सब पूरा सारी फॉर्मेलिटी नोट कीजिए करना है और शुरू कर दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि इस सतयुग में ऐसा था है, लेकिन कलयुग में आप कर ही नहीं सकते। पहली बात, जो व्यक्ति निर्जला एकादशी नहीं कर सकता, सही बात है नहीं? अरे एकादशी के दिन प्रसाद जो है 1 बजे खाता है, मुंह की नानी आ जाती है 1 बजे तक, उपवास क्या करेंगे? सच के लिए सच। कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कृपा है ये सब चीजें क्या कर दिया है, आसान कर दिया है। आपको कुछ नहीं करना है, आप परम गुरु जो भगवान है उनका आदेश पालन करिए, प्रभुपाद जी जो हमारे गुरु हैं उनका करें, जिससे हम लोग वर्तमान गुरु से भी चले, अर्थात अपने अपने गुरु का जो आदेश है उसको क्या करना चाहिए, पालन करें। अब अदिति के गुरु कौन थे? पति ही उनके क्या क्या बने? गुरु बने। अगर ऐसा हो जाए जितने पति हैं सब भक्त बन जाए, और उनकी पत्नियां उनके शिष्य, पति जो कहता है उसको हमें क्या करना चाहिए, करना चाहिए। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में पत्नी का सब कुछ कौन होता है? पति होता है। पति को देसी भाषा में बता रहा भर्ता, भर्ता भरण पोषण करने वाले, आसन भरण पोषण करने वाले कौन है? भगवान है। लेकिन जब शादी हो जाती है तो पति की जिम्मेदारी होता है कि उसका रख रखाव रखे। तो पत्नी का भी कर्तव्य होता है कि वो अपने पति के आदेश के अनुसार कार्य करे। तो जब कश्यप मुनि ने आदेश दिया कि आप जो हैं पयोव्रत का पालन करिए, उसके बाद फिर हम समूह बनाएंगे और तब पुत्र जो उत्पन्न होगा भगवान ही के रूप में आएंगे, है ना? ऐसा था। तो उन्होंने पूर्णतः क्या क्या पालन किया। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझा रहे हैं कि किसी भी प्रकार की उन्नति के लिए प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य है वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है कि प्रभुपाद जी हर तात्पर्य में उनका लक्ष्य रहता था कि हम किसी न किसी तरह से भगवान का भक्त बने, भगवान के अनुसार और गुरु के अनुसार ही जीवन जी। वह प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रामाणिक गुरु का आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन करना होता है। तो किसी भी क्षेत्र में यदि आप पालन करते हैं गुरु का आदेश का, उनके अनुसार जीवन जीते हैं, तभी आप प्रगति कर सकते हैं। चाहे आध्यात्मिक जीवन हो और भौतिक जीवन में भी गुरु होते हैं जो शिक्षा देते, शिक्षा गुरु है ना, जैसे स्कूलों कॉलेजों में जो टीचर्स होते हैं उनके लिए वही गुरु शिक्षा देते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति अगर करना है तो निश्चित रूप से आप सबको, हम सबको क्या करना चाहिए, अपने गुरु का आदेश का पालन करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी ने ये निर्देश दिया है कि हमको सुबह 3:30 बजे उठ करके मंगल आरती आना चाहिए, हमको आना चाहिए क्योंकि ये आदेश प्रभुपाद जी ने जो सिस्टम लाया कि भागवत कक्षा हो तो सबको आना चाहिए, तुमको आना चाहिए। यही तो आदेश जब बता दिया गया शास्त्र के माध्यम से, तो गुरु के माध्यम से हमें चार नियम का पालन करना चाहिए, तो करना चाहिए। तो जो नहीं करता वो कभी प्रगति कर नहीं सकता। इसमें ये ऐसे नियम बनाए गए हैं कि जिसको अगर हम चाहें तो पालन कर सकते हैं, लेकिन ये तभी संभव है जब हम क्या रहेंगे, दृढ़ संकल्प होंगे, आलस नहीं रहेंगे। देखो आलस रहित शब्द क्यों जुड़ा है, क्योंकि जो आलस है भक्ति में सबसे बड़ा बाधक है। सच है, जैसे इसमें खूब ठंड का समय है और जब आप रजाई में या ब्लैंकेट में लेटे हुए हैं तो सुबह जब 3:30 बजे अलार्म बजता है तो अलार्म देकर सब 10 मिनट और आराम कर लें और फिर आप उठ ही नहीं पाते हैं, तो रजाई छोड़ने का दिल करता है नहीं करता ठंड। इसीलिए मंगल आरती में संख्या धीरे धीरे कम हो जाती है, क्यों, लोग ठंडक में ना रजाई को नहीं छोड़ पाते, जो शरीर छोड़ेंगे तो रजाई रहेगी कुछ नहीं रहेगा। जिस शरीर को आप सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं जैकेट से मफलर से, इसको ठंडक ना लगे, कितना इसको सुरक्षा, कितना टेंशन है, अपने लिए कोई टेंशन नहीं है कि हमारा, हम अपने लिए क्या कर रहे हैं भाई। हम जो मंगल आरती जाते किसके लिए जाते, अपने लिए जाते कि आत्मा का खुराक भगवान का दर्शन है। आप सुन, आत्मा का खुराक क्या है, भगवान का दर्शन, भगवान के नाम का जप करना, कथा सुनना, ये हमारा आत्मा का खुराक। अगर आत्मा मजबूत रहेगी है ना तो शरीर अपने आप सुरक्षित चलेगी, क्योंकि शरीर को कौन चलाता है, आत्मा चलाता है। इसलिए जो आप ज्ञानी हो जाते हैं ना वो उन्हें ठंडक भी नहीं लगती। भगवान गीता में शुद्ध भक्त का लक्षण आते क्या होता है कि शुद्ध भक्त होता है जो सुख दुख लाभ हानि सर्दी गर्मी सबको सहन करने की क्षमता रखता है। कोई अलग से नहीं समझा रहे हैं कि भगवान कहते हैं कि जब व्यक्ति वास्तव में आ जाता है तो उसको सर्दी गर्मी किसी चीज का कुछ एहसास ही नहीं होता, क्योंकि उसे अपने गुरु के शब्दों पर क्या होता है विश्वास। जैसे एक बार एक गोपी थी, अक्सर वो दूध दही लेकर के बेचने के लिए क्या करते थे, जाया करते थे। लेकिन जब दूध दही लेके जा रहे थे तो वापसी में उसको जो है एक जगह कथा चल रही थी, तो जो कथा करने वाले थे वो भगवान के नाम का महत्व बता रहे थे, क्योंकि अगर वो कथा में बता रहे थे वो पीछे जाकर के बैठ के मटका लेकर और कथा चल रही थी, हर नाम की महिमा की कथा चल रही थी। तो गुरु जी ने कहा कि हर नाम में इतनी शक्ति है कि आप संसार सागर को पार कर सकते, सारे अंधकार को दूर किया जा सकता है, सारी अज्ञानता दूर हो जाएगी हर नाम से। तो उसको प्रवचन जो है बड़ा अच्छा लगा। वो जब गई दूसरे दिन फिर मटकी लेकर, वास्तव में पहले जब जाया करती थी तो बड़े लंबे रूप से जाती थी, और जब कथा में उसने सुना कि भगवान के नाम इतनी शक्ति है कि हम सागर पार कर सकते हैं, तो दूसरे दिन क्या किया, वो शॉर्टकट अपना है, लेकिन वो शॉर्टकट से एक नदी पड़ती थी, तो नदी की वजह से वो दूर के रास्ते जाया करते थे जहाँ पहुँचना था। तो कहे कि जब गुरु जी ने बोला है कि भगवान के नाम का जप करने से सागर पार कर सकते हैं, तो नदी तो छोटी है, नदी क्या है, छोटी है। इतना विश्वास हो गया गुरु जी के आदेश का और खूब नाम जप करने से, उसी दिन से खूब नाम जप करने, सिर्फ एक दिन उसका परिवर्तन हुआ, और इतना ध्यान से वो जब क्या, इतना विश्वास हो गया कि नदी के पास गई कि गुरु जी ने बोला है कि भगवान के नाम में इतनी शक्ति होती कि सागर पार कर सकते हैं, तो नदी भी पार कर सकते हैं। और जब वो चली, वो गई और नदी में प्रवेश करते चली गई और उस पार चली गई, माने पानी के ऊपर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जो है जमीन पर चढ़ रहे। भगवान ने क्या किया, उसके लिए प्लेटफॉर्म बना दिया आसन, क्यों, क्योंकि विश्वास की वजह से। तो उस बार चली गई प्रयास अपना दूध दही बेच करके और फिर उसी रास्ते से ऐसे आ गए। तो एक दो बार जाने के बाद फिर जब दो तीन दिन ऐसे आने के बाद फिर वही गुरु महाराज कथा सुना रहे थे। तो जब कथा समाप्त हो गई तो वो क्या किया, गुरु महाराज से मिले, कहे गुरु महाराज आपने जो कहा था पूरा सत्य निकला। कि कैसे, कि आपने बोला था कि बहुत सागर पार कर सकते हैं, तो बहुत सत्य आपने बोला, आपकी बात पर हमने इतना विश्वास कर लिया कि मैं अब जब नदी जाती हूँ तो नदी में पैसे पार कर लेता। तो गुरु महाराज को आश्चर्य कि तुम्हें विश्वास ही नहीं था, कह कि गोपी पागल हो गई ऐसा कि मैं तो अभी तक पार, हम तो नदी से पार करते हैं। कि नहीं गुरु जी आप चलिए मेरे साथ। अब गुरु जी भी चले। अच्छा दोनों साल में गए तो उसको तो विश्वास था कि मैं तो गुरु जी की क्या हूँ, शिष्य हूँ, अगर मैं पार कर तो गुरु जी गुरु जी है। तो आसानी से पार हो जाए, उसको ये विश्वास था। हुआ क्या, जब पानी में प्रवेश करे किए तो वो तो चली जा रही थी और वो जो गुरु जी डूबते चले जा रहे थे, कहीं बचाओ बचाओ क्या हुआ, कहे तो गुरु जी ने खुद देखा कि देखो मैंने कथा वाचक था, एक कथा सुन करके इसको इतना सा हो गया, मैं कब से कथा कर रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं जानता। तो वापस आ गई गुरु जी। इससे संदेश मिलता है कि हमें अपने गुरु भगवान का जो संदेश है उस पर हमें क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। देखिए एक उदाहरण, हमारे प्रभुपाद जी आज इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा कर दिया, किसके बल पर? भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास के बल, सच है कि नहीं सच? यही सच है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी ने उनको आदेश दिया कि आप जाओ अनुवाद करो और जाकर क्या करो, प्रचार करो। हमारे प्रभुपाद ने क्या किया, इसको बड़ी गंभीरता से लिया, लिया कि नहीं लिया? और 12 साल तक, कितने साल तक, वृंदावन राधा दामोदर मंदिर रख करके उन्होंने कितनी कठिन तपस्या की, एक छोटे से कमरे में रखकर सारे शास्त्रों का अध्ययन किया। यहाँ तो टेम्पल प्रेशन बोलता रहता है, गीता पढ़ो गीता पढ़ो, कोई पढ़ते नहीं शास्त्र, पढ़ने का समय नहीं निकाल पाते। हमको पढ़ना चाहिए, लिखना तो बहुत दूर की बात है, प्रभुपाद जो लिख कर दे पढ़ने की फुर्सत नहीं, सोच रही हूँ आप पढ़ने तक ही फुर्सत नहीं है, फुर्सत समोसा खाने के समय निकल जाता है, पनीर का पकौड़ा खाने समय निकल जाता है, पढ़ने के समय निकल, बड़ा मुश्किल है। सच है कि नहीं सच है? यही सच है। हम लोग उतनी गंभीरता से नहीं ले पाते आदेश। प्रभुपाद जी ने कितनी मेहनत करके लिया, अब देखो वो आदेश प्रभुपाद जी ने अपने दिमाग में क्या कर लिया, बैठा लिया, बड़े प्रोएक्टिव होकर के कैसे गुरु महाराज जी का वचन पूरा हो उसके लिए पूरा प्रयास शुरू कर दिया, और अंततः उनको क्या मिला, सफलता मिली। प्रभुपाद जी कार्गोशिप से वहां पहुंचे, बड़े विपरीत परिस्थितियों में पहुंचे, और लोअर इस साइड जाके छोटे से कमरे में रहते थे, स्टोर फ्रंट छोटे से। आप जानते हैं अभी हम मायापुर गए थे, प्रभुपाद जी का जन्मस्थली दिख गया है जहाँ प्रभुपाद जी जन्म, कितने लोगों ने देखा, माता जी हर जगह पहुंची रहती। अब यही देख लीजिए कितने ब्रह्मचारी देखे ही नहीं, जो भी मायापुर जाए आपको कलकत्ता मंदिर में एक दिन रुकना चाहिए, प्रभुपाद जहाँ जन्म लिए उसको देखना चाहिए, उससे बहुत बुरा आपकी आप ताजुब करेंगे कि प्रभुपाद जी इतनी छोटी सी घटिया जगह में जन्म लिए थे, बहुत पिछड़ा हुआ जगह, जिसे देसी भाषा झुग्गी झोपड़ी कह सकते, जिस बस्ती में, क्योंकि प्रभुपाद जी अपने घर में जन्म नहीं लिए थे, अपने नानी के घर में जन्म लिए थे। तो जब फर्स्ट डिलीवरी होती है तो ननिहाल में की जाती है, मायके गए थे, तो प्रभुपाद जी के बाद मायके गए थे, उनके नाना के घर में प्रभुपाद जी जन्म लिए, छोटे छोटे 3-4 कमरे और छोटे छोटे कमरे, आप कल्पना नहीं कर सकते। और जिस पेड़ के नीचे प्रभुपाद जन्म लिए वो किसका पेड़ था, कटहल का, वहाँ पे इस कान बोल लगा रखा है कि दिस इज द ट्री जयपुर ट्री वेर द फाउंडर आचार्य ऑफ इस कान ऐसी जन्म लिया ओजिया। वो पेड़ अभी भी एज इट इज है, और चार तरह से तार से बांध दिया ताकि पेड़ को कोई नुकसान न करे, और वो कमरा इस कान ने जान लिया तो खरीद लिया है, वो ले लिया इस कान का वहाँ ताला लगा रहता है। तो मैं जब गया वो खोल के दिखाया, सोचने वाली बात है कि हमारे प्रभुपाद जी ऐसी जगह जम लिए, वृंदावन में जा करके एक वहाँ भी एक छोटे से कमरे में कितना ग्रंथों का मत कितनी तपस्या की, अमेरिका जाते हैं छोटा कमरा उनको छोड़ता ही, वहाँ भी लोअर साइड में एक छोटे कमरे में, लेकिन प्रभुपाद जी ने अपने गुरु के जब आदेश को कभी नहीं भूला, कि गुरु के आदेश का банкнот. Поглад ги пред Санта од Бисвас. Усе ги бор пропати. А итна вламен крдија, ки хам лоб тарсер. Раде ги ми? Тарсер? Кене тар парксар? Сочи на лебат. Китни бори-бори палес Прабхупаджи Махараджа. То ехи шудх бхатка чамадкар. Хамаре гуру ке прат, апни гуру ке прат, кайсе самарпан хона чае, сардхава и бисвас хона чае. Ясе Прабхупаджи апни шишьо ко деку, Прабхупаджи 108 мандир ка нирмаан карке гае. Унки шишьо не пури таакар лага ди. अपने गुरु महाराज प्रभुपाद जी का करने के आदेश का पालन करने प्रभुपाद जी बिना ट्रेनिंग दिए कि तुम यहाँ ऑस्ट्रेलिया चल जाओ और प्रचार करो छोड़ देते थे भगवान से प्रार्थना करते थे कि कृष्ण मैं जानता था इसको भी ये भी आपकी सेवा करने के लायक नहीं है लेकिन क्या करें कुछ तो करना पड़े लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आपके प्रभाव से आपके निर्देशन में काम कर लेंगे ऐसे से भक्त को प्रभुपाद होते रसिया भेज देते थे भाषा का भी उन्हें देते थे कि यहाँ जाकर प्रचार को वहाँ 80 लोग गए सिर्फ प्रभुपाद जी के आदेश का पालन क्योंकि प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा प्रभुपाद चाहते थे कि गीता घर घर पहुँचे थी उस समय कितनी तकलीफ से एक गीता अगर डिस्ट्रीब्यूट होती थी भक्त कितना खुश होता था अरे हम लोग करीब आज से 35 साल पहले तो मुझे 35 साल हो गए संस्था 35 साल पहले हम लोग जब 500 गीता कर लेते थे बहुत बड़ी बात हो जाती थी 500 गीता पढ़ के है और आनंद तब आता जब आप एक एक दो गीता पढ़ते यहाँ तो हम क्या क्या पढ़े ठार्स गए शेर साहब के यहाँ है अरे आप इतने बड़े आदमी हो 10,000 गीता पढ़ लो क्या फर्क ठीक है 5,000 गीता कर लेते यहाँ ताली बज गए हम मस्त होकर सो गए 5,000 गीता पढ़ गए बड़ा आसान हो गया लेकिन वो सुन याद करिए कि जब कितना संघर्ष था प्रभुपाद कितना संघर्ष करते थे इसी दिल्ली में प्रभुपाद जी बैक टू गॉड हेड खुद अपने हाथों से भेजते थे एक ही भगवती दर्शन में चल रहे प्रभुपाद कितना संघर्ष किया हम लोग उनके नाती पोते हैं राइट मैं बोल जब प्रभुपाद जी घर देख के आए मंदिर आए क्योंकि भाई शाम की फ्लाइट थी दिल्ली आने के तो जब आए तो संजो देखे कि प्रभुपाद जी घर देख करके आए थे गेस्ट हाउस में जैसे प्रवेश किया तो रिसेप्शन जाते कौन बैठा था प्रभुपाद जी का बेटे छोटा वाला वृंदावन डे है उनका नाम मिले मिलकर इतनी खुशी हुई लेकिन ताजी हुआ कि प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा मोमेंट खड़ा कर दिया हम लोगों को कहाँ ला के बैठा दिया अब उनके बेटे अजीती सिंह बेचारे एक कमरे में रहते हैं छोटे से घर है ना उनके लिए कुछ नहीं किया इतना बड़ा त्याग प्रभुपाद जी ने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया राइट अजीती सिंह वैसे और आज देखा हम उनके नाती पोते हैं कितना प्रभुपाद जी करते सोचने वाली बात क्यों ऐसा जानते क्या हुआ उन लोगों ने अपने पिता का पालन नहीं किया ये हम कहना चाहते सच है अरे उनकी पत्नी प्रभुपाद जी की उनको अच्छे नहीं लगता कि प्रभुपाद जी जो ट्रांसलेट करते थे भारत में उनको अच्छा प्रभुपाद जी एक पत्नी अब 2-3 बच्चों के लिए नहीं आए थे किसके लिए आए थे पर विश्व के लिए आए थे तो कैसे पूछेंगे आप देखिए इसीलिए जब प्रभुपाद जी अपने घर गए थे तो उनकी पत्नी क्या किया था कबाड़ी को बेच दिया था तब प्रभुपाद जी ने कहा You want tea or me? उन्होंने कहा टी मुझे चाय चाहिए, तो प्रभुपाद जी ओके यू ड्रिंक टी आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। अब प्रभुपाद जी छोड़ के क्या करिए चले, और आज कितने बेटे हैं, हम लोग नाती पोते हो गए क्या, घने कितना बड़ा परिवार प्रभुपाद जी, आप लोग सब लोग कितने जुड़ गए, कितना बड़ा परमानंद। ये है भगवान के आदेश, भगवान के नाम पर संदेश पर विश्वास का और गुरु के प्रति विश्वास का फल। इससे बड़ा उदाहरण आप क्या समझ सकते हैं, शास्त्रों में तो उदाहरण पड़ा हुआ है, लेकिन हमारे प्रभुपाद जी ज्वलंत उदाहरण है जिनको हम लोग समझ सकते हैं। बहुत समझने की बात है, एक किस पर निर्भर है, विश्वास। तो जिस दिन भगवान के प्रति हमारे हृदय में इस तरह से आस्था उत्पन्न हो जाएगी, हम भी चमत्कार कर सकते हैं, और आप लोग कर रहे हैं। जिसकी जितनी साधना है, देखिए आदमी साधन से महान नहीं होता, किससे महान होता है, साधना से महान होता। अगर हमारी साधना मजबूत है तभी हम महान बनेंगे, साधन से नहीं कि BMW गाड़ी से चल रहे हैं, इससे आप क्या महान है। BMW गाड़ी तो आप चोरी करके खरीद सकते हैं, टैक्स चोरी करके, इससे एक तो नोटबंदी आई, लोग इतने करप्ट हैं कि जो पैसा हजारों लोग पास होना चाहिए एक आदमी दबा के बैठा हुआ है, तखा सोचने वाली। अच्छा रोज गाड़ी बदले क्या फर्क पड़ता है, पैसा तो सबका लूट के बैठा हुआ। तो साधन से इंसान मानने होता, साधना से मान, और साधना कैसे होनी चाहिए उसके लिए गुरु के अनुसार, गुरु जैसा कहता है। हमारे गुरु कहते हैं कि तुम्हें साधना क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। हमारी साधना क्या है, मंगल आरती आना, सोलमाले का जप करना, चार नियम का पालन करना, कथा सुनना, सुनाना, पढ़ना, प्रसाद ही लेना, प्रसाद के अलावा कुछ नहीं लेना, बिना भगवान भूल गए, ये क्या है साधना। तो अगर हम इस साधना को करेंगे तभी हम क्या बनेंगे, महान। इंसान भवनों से महान नहीं होता, बड़े बड़े पैलेस में रह रहे हैं, भावना से प्रधान होता। आपकी भावना कैसी, आप बड़े भवन में रह रहे हैं और भावना आपकी खराब हो, है नहीं, तो क्या फायदा। जैसे रावण का पूरा लंका पूरा भवन किसके था, 3 लाख या 4 लाख घर तो सिर्फ सोने के बने थे, ऐसे 4 लाख से ज्यादा घर हीरे के बने थे, हीरे जवाहरात सबका अलग, तांबे का, लोहे का, चांदी का, अलग अलग भवन बनते। वाल्मीकि रामायण बड़ा विस्तार बताया गया, इतने बड़ा भवन में रह करके उसकी भावना कैसी थी आप सोच सकते। हनुमान जी ने इसीलिए आग लगाई, अरे बाप रे इतना बड़ा बड़े महल दूर से इतना दिखता है, अंदर इतना घटिया काम होता है कि मांस खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, तो बड़े बड़े जो भवन आप देखते हैं बंगले, इसके अंदर क्या हो रहा है ये सोचना चाहिए कि अंदर क्या हो रहा है। हनुमान जी से देखा नहीं गया, आग लगा दी, ऐसे भवन तड़ा लगा देना चाहिए, देखने से क्या सुंदर। अब आपका जो शरीर रूपी भवन है, आपका शरीर क्या घर है, घर है कि नहीं, शरीर को मंदिर कब बताएगा, क्योंकि चीज इस हृदय में भगवान रहते हैं, ये भी एक घर। अब आप सुंदर भवन है, आपका सुंदर शरीर है, भावना गलत है, फायदा क्या हुआ। भगवान भावना से प्रधान होता है, भवन से प्रधान नहीं होता। आपको सबरी की तरह एक कुटिया में रहेंगे, भगवान उससे प्रभावित हो, राइट। भगवान भवन से प्रवाहित नहीं होते, किससे प्रवाहित होते हैं? भावना से। आप एक छोटी सी कुटिया में रहें, लेकिन आपकी भावना क्या है? कृष्ण भावना भावित है, कृष्ण भावना में। अगर आप कृष्ण भावना भावित हैं, कृष्ण भावना में है, तो आप एक छोटी कुटिया में रह रहे हैं, उसमें भी आप क्या रहेंगे? प्रसन्न रहेंगे। सबरी की तरह, सबरी कहती यही स्थिति थी, इतना वो राम में हो गई थी, अगर पत्ता भी खड़ता था ना, वो दौड़ के कुटिया से निकल देती थी कि प्रभु आ रहे थे ना। अब प्रभु हमारे बड़े आनंद लेने वाले, जब आ गए तो पता ही नहीं चला कब आ गए, कोई पत्ता खटका ही नहीं। भगवान के टेस्ट लेते हैं, जानते हैं सबरी उसमें एक काम में बिजी थी, चुन चुन के जो बैर लाई लेके आई थी ना, उसी को डलिया में रख करके छाट रही थी कि मीठी है खट्टी है, मीठी है खट्टी है, जो खट्टी होती फेंक देती, जो मीठी रहती रख देती थी। मत प्रभु आएंगे तो खिले, ऐसे प्रभु जी प्रभु आ गए, उसके सामने खड़े हो गए, उसको पता नहीं चला, क्योंकि भावना में थी। बैर में किसको देख रही है? भगवान को देख रही है। किस कॉन्शियस से उसका कितना शुद्ध है? भावना। तब भगवान ने थोड़ा सा आवाज लगाई, शबरी शब्द। आदमी जब बहुत आनंद में आ जाता है तो शब्द नहीं निकलते, ये जान लीजिए, निशब्द हो गए। अब फिर आप सब जानते हैं कि भगवान को बैठाया और झूठे पैर खिलाया और भगवान को प्रेम से खा रहा है, तो भगवान नीचे भवन से नहीं प्रभावित होते, भावना से प्रभावित होते। आपकी कॉन्शियसनेस भगवान का कैसे चिंतन करते हैं, हमेशा राम का नाम लेती थी। ऐसे गाँव राव को सुनाते, एक गांव में एक वृद्धा थी, उसके परिवार में कोई नहीं थी, वो बुढ़िया थी, उसका घर गांव के एकदम किनारे में था। चलो गांव के लोगों को पता है, वो क्या करती थी, ऊपर पालती सब, जो गोबर होता है ना, गोबर को इकट्ठा करके ऐसे थप्पड़ मार के ऊपर बनाती। तो वो इतनी भक्ति थी भगवान के प्रति, इतनी भक्ति थी वो, कि जो भी काम करती थी वो कृष्ण नाम लेती थी, हरे कृष्ण उठते बैठते खाते सीते धाते, बिल्कुल चैतन्य महाप्रभु का आदेश का पालन करते हुए जो भी उठते बैठते कृष्ण कृष्ण ऐसी करती थी। तो जब ऊपर पाती थी तब भी कृष्ण का नाम करती, कृष्ण का नाम लेती थी, अर्थात बिना कृष्ण का नाम लिए वो कोई काम करती नहीं थी, हमेशा भगवान का नाम। भगवान से बड़ा प्रभावित इस तरह से कृष्ण और ऊपर बेस करके ही वो अपना क्या करती थी, रोटी दाल इकट्ठा करती, खाना का व्यवस्था करती थी। तो गांव में जो लोग हैं, जिस शहर में जो ऊपर आते हैं, शहर के लोग थोड़ी पाते हैं ऊपर, गाँव से खरीद के आते है ना, गाँव वाले पर बनाते, तो ऊपर बेचना भी क्या है, व्यापार लोग बनाते, तभी शहर के लोग ऊपर यूज करते हैं, तो वैसे करते। हुआ क्या कि उस लड़के थे वो उसका बड़ा मजाक उड़ाते थे, कहते कि हमेशा एक कृष्ण कृष्ण बोलती रहती है, ऊपर बनाती तभी कृष्ण बोलती है। तो दो चार लड़के थे, उन्होंने मिल करके क्या किया, ऊपर चुरा ले गए, क्या किया, ऊपर चुरा करके अपने ऊपर मिक्स कर दिया, ऊपर सब एक जैसा होता दिखाई, सब मिक्स हो गया। अब वो जब गई, चूंकि उसको बेचना था, तो गई देखी कि सूख गया होगा, इकट्ठा करके बेचने गए तो वहाँ ऊपर गायब था, चोरी चला गया। तो ऊपर चोर भी होते हैं गाँव, गाँव में ऐसे चोर होते हैं, ऊपर चुरा ले जाएंगे सब उठा ले। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो होली के दिन जब होली लगती थी ना, तो खूब चोरी होती है, ऊपर ऊपर की चैला सब उठा कर ले जाते, होली मिलाते थे। हाथ तब कर देते थे जब एक बार गांव का बनिया था उसका गांव जो होते ना जो तो किवाड़ बोलते हैं है ना दरवाजे को किवाड़ बोलते हैं तो उसका किवाड़ उखा डाल दिया उसके लड़के बड़े बकवास होते अरे तो गांव में इसी चीज की चोरी होती थी तो ऊपर की चोरी तो उसने जाते जब उसको ही पता चला तो जानते क्या होते कि हे कृष्ण आप कितने नटखट हो मैंने माखन चुराने की तो कथा तो सुनी थी आप ऊपर की चोरी करोगे तो मुझे विश्वास नहीं होता लेकिन अगर आपने ऊपर की चोरी किया है तो जरूर इसकी जरूरत हुई होगी तो विश्वास हो गया वाले ऊपर को भी चोरी का भी विश्वास हो गया कि ये भगवान की इच्छा से सब हुआ है देखो भावना उसकी कितनी शुद्ध वैसे भावना अब उसके बाद खाने क्या था एक भेली गुड़ था भेली समझते ना जब मुट्ठी से हम लोग गुड़ बांधते गाँव ऐसे एक उसको भेली गुड़ थी ऐसे शहर के लोग क्या जाने से हम लोग जानते हैं गाँव के लोग हैं गुड़ बनते हुए देखा है राइट बनते हुए गर्म गुड़ खाया भी गर्म गर्म गुड़ खाया गुड़ बनता रहता ना खाते थे है तो गुड़ की भेली उसने क्या किया जो कथा गाँव की तो वो भेली गुड़ को आधा कर दिया आधा रख दिया राधा क्या कर खा करके और दो गिलास पानी पी करके सो गए जब सोने गए तो एक शंख जो है वहाँ पे आ गया और सांकल खटखटाया है ना सकरी जानते हैं ना लगाने का तो उसे खटखटाया तो बुढ़िया उठ के आए तो जो संत बाबा था बड़ा सुंदर एक महात्मा जो है आया तो कहे माँ मुझे भूख लगी है तो कहे कि स्वामी जी मेरे पास तो कुछ है नहीं लेकिन हमने आधा भेली गुड़ रखा हुआ है अपने लिए वही मैं दे देती तो जो रखा हुआ था वही भेली गुड़ और एक गिलास पानी उनको दे दिया तो बड़े संतुष्ट हुए महात्मा जी बड़े प्रसन्न उसने कहा कि क्या तकलीफ है खाना क्यों नहीं तो उसने अपना सब बता दिया कि ऊपर बेच करके हम गुजारा करती हूँ लेकिन स्वामी जी क्या बताऊँ है ना हरे कृष्णा मैंने वो जो है ऊपर कोई उठा लेगा एक कृष्ण की अच्छा से सब है ना तो उसमें कह इसका समाधान मेरे पास है आप चिंता मत करो ये आपका ऊपर मिल जाएगा महात्मा जी ने बोला अब महात्मा जी क्या किए गांव के सरपंच समझते ना गांव का जो मुखिया होता है उसके पास गए ये बात मुखिया तक पहुंच गई थी कि जो बुढ़िया है जो भक्ति है भगवान कृष्ण का नाम लेती है उसका ऊपर चोरी चला गया गांव में ये सब चीजें बड़ी तेजी से फैलती हैं आग लग गई चोरी चला गया किसी को मार दिया बड़ी तेजी से फैल गई तो सरपंच तक बात पहुंच गई थी तो सरपंच ने कहा कि महात्मा जी मैंने भी सुना है उसका चोर चला गया तो महात्मा जी कहा कि देखो मैं सिद्ध महात्मा अपने गांव के जितनी ऊपरिया हैं सबको बुला दो कि अपनी अपनी ऊपर घर की सारी ऊपर ला करके चौपाल पे रख दे मैं बता दूंगा बुढ़िया कौन सा ऊपर है सरपंच राधा जी के बड़ा पहुंचा हुआ महात्मा के ऊपर अगर मिस है तो आप कैसे बता सकते हैं कि वहाँ कहे कि मुझे कला मालूम है हम सिद्ध महात्मा बुढ़िया कहे कि ऊपर निकाल बाहर कर देंगे आप ऊपर मंगा भाई सरपंच है प्रधान गांव का वो जो आदेश देता है गाँव से मानते हैं उन्हें ढिनूरा पिटवा दिया ढोल सकते ढोल पिटवा दिया कि सुनो 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 आप लोग अपना सारा ऊपर ला करके चौपाल में रख दीजिए और सारे गाँव वाले जो है बैलगाड़ी में लाद लाद करके इस सरपंच का आदेश था सारा ऊपर जाकर रखे और सारे गाँव के लोग इकट्ठे हो गए और जो चोर लोग चोरी किए थे वो भी इकट्ठे हो गए उनको उस वो भी अपना ऊपर भी था उसे बुढ़िया का भी ऊपर था है ना सारे ऊपर इधर सब आ गए बुढ़िया को सब पूरा ढेर लग गया ऊपरों का तो सब लोग किस रहे खड़े हुए चारों तरफ से, बीच में ऊपरों का ढेर, पूरे गांव के सरपंच और महात्मा जो है ऊपर का चक्कर काट रहे हैं। सब ये देखना को था कि कैसे बता देंगे कि ये पल जो है बुढ़िया का है। बुढ़िया बेचारी वहाँ गई थी, उसको खुद नहीं पहचान रहे कि मेरा उपल कौन, ऊपर से नीचे से होते हैं। तो सब क्रिया किस पर थी? महात्मा जी जैसे आप लोग कथा से वापस की निगाह है कि क्या आगे क्या होने वाला है। यही सीन उसमें मालूम था कि आगे स्वामी जी क्या करने वाले हैं। अब आप सुनने की देखा उत्सुकता वहां भी थी, यहाँ भी आप सुनने की उत्सुकता है कि क्या हुआ। अब वो लोग देखना चाहते थे क्योंकि सब लाइव सीन चल रहा था, उसमें तो लाइव था, हम लोग तो सुन रहे हैं। ऐसे हुआ ऐसे दृश्य। अब जो है महात्मा जी कम नहीं थे, महात्मा जी क्या किए, दो तीन बार परिक्रमा किए, पांच से नाटक दिखा दिए, उनको सब पता था कि क्या है। जैसे जादूगर होता है ना, उसको ठीक मालूम होता है, लेकिन लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए जो है छोटे मत ढूंढता है, डमरू बजाता है। अब जानते हैं मैं भी जादूगर हूँ, पता नहीं आपको, मैं जब कॉलेज पढ़ता था तो मैं जादूगरी दिखाता था और इसके लिए मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था, फर्स्ट प्राइज मिला था कि मैं साइंस, मुझे कई ट्रिक अच्छे आते हैं, है ना, हम दिखा सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं अभी दिखा सकते हैं। उनको पता है हमने दिखाया था। हम जो हैंड करछिप नहीं होता है कि मैं उसका मैं राइट बनाता हूँ चूहा, और चूहा जंप मारता है, तो ये भी एक मैजिक। सुन अब भगवान का मैजिक देखिए, वो महात्मा के रूप में जानते कौन थे? भगवान ही थे, कृष्ण ही एक महात्मा के रूप में आए थे। अब महात्मा जी ने क्या किया नाटक, भगवान का सम्मान था कि बुढ़िया का ऊपर कौन। भगवान क्या किए, बैठ गए और एक ऊपर को लिया और कान में लगाया, तो उसको ढेर में फेंक दिया, फिर एक ऊपर उठाया उसको अलग कर दिया, क्योंकि किसका था, बुढ़िया का था। अब भगवान क्या क्या, सारे उपलों को कान लगाते अलग कर देते, तो जो अलग कर देते तो एक पता चल गया बुढ़िया का है, जिन्हें तो हॉस्पिटल इस तरह से कर गए। आप समझे एक घंटे के अंदर सारे उपल भगवान ने ढूंढ निकाले, कान लगा सब पूरा। अब जब बुढ़िया को बुलाया तब बुढ़िया देखा कि ये तो उसी का उपल, जब तक मिक्स था तब तो पहचान नहीं पाई थी, लेकिन जब अलग कर दिया तो उसको पता कि तुमने है। सब लोग बात आ सके। अब भगवान का बुढ़िया से कहा, अब देखो ना, अब तुम्हारा दिन दूर हो गए, तुम्हारा तकलीफ दूर, बड़ा आशा कर रहे थे कि एक भीले गुरु का आशा देखिए। अब स्वामी जी अगर हम एक भीले गुरु नहीं खिलाए होते, पानी नहीं पिलाए होते, तुम्हारे ऊपर वापस नहीं आते। तो उसने महात्मा जी को प्रणाम किया, महात्मा जी आशीर्वाद करके वहां से चले गए। ये बात पूरे गांव के लोगों को बड़ा आश्चर्य था, तो सब तो महात्मा के पीछे नहीं गए, लेकिन जो चार लड़के चोरी करके लाए थे उनसे रहा नहीं, दौड़ करके कुछ दूरी पे जा करके, जब काफी दूर निकल गए गांव से, तो वो तो पहुंचे, कहे कि स्वामी जी, वो लोग प्रणाम किए कि स्वामी जी आप कान से कैसे पता लगा लिया कि बुढ़िया के ऊपर, कि हम ही लोगों ने चोरी किया था, लेकिन आंख से देख कर पता भी बता सकता है, लेकिन कान से लगा करके बता सकते, ये तो मैं पहली बार देखा। भगवान ही थे, भगवान कहा देखो प्यारे बच्चों, ये जो बुढ़िया थी उसका तुम लोग क्या मजाक उड़ाते थे कि वो कृष्ण कृष्ण बोलती थी, क्योंकि कृष्ण का नाम लेकर के सब काम करती थी। तो ऊपर जब पाती थी तो कृष्ण का नाम लेकर के, तो कृष्ण का नाम उसके ऊपर से निकल रहा था, है ना। तो जब मैं कान लगाता था तो जिस ऊपर से कृष्ण निकलता था, कृष्ण कृष्ण, वो मैं जान जाता था कि बुढ़िया कहे कि इस पूरे गांव में एक ही बुढ़िया है जो कृष्ण का नाम लेती है। तो ऊपर भी उसी का, है ना, उनकी आंखें खुल गई, है ना, कि इतना बड़ा चमत्कार है भगवान का नाम। वो दोनों भक्त क्या बन, जो चार लड़के थे जो, वो क्या बन गए, भक्त बन गए। तो कृष्ण के नाम में कितनी शक्ति है ये निर्भर करता है भावना और विश्वास। उस बुढ़िया पर इतना विश्वास था कि ऊपर की चोरी भी चली गई तब भी इस पर करे इस भगवान की इच्छा से। भगवान अभी भगवान उसका ऊपर क्या कर गया, कान लगा करके देख। तो जब कृष्ण भावना भी आप हो जाते हैं तो आपको हर चीज से कृष्ण की आवाज सुनाई देती है, अच्छा लगता है ऐसा। तो इसीलिए प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य बताते हैं कि जो गुरु का जो आदेश होता है बड़े दृढ़ता से उसका क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। जैसे अदिति ने किया अपने पतिदेव का आदेश को बड़े दृढ़ता के साथ पालन किया, पवित्रत कमान किया, और उसका क्या परिणाम मिला अभी संध्या में आपको पढ़ेंगे कि उस पवित्रत से भगवान इतने प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए कि भगवान अदिति के गर्भ प्रवेश करने के लिए क्या हो गए, तैयार हो गए। आगे की जो श्लोक आएंगे उसमें ये आपको बताया जाए किस तरह से कश्यप मुनि के माध्यम से भगवान अदिति के गर्भ में प्रवेश करते हैं और उसके बाद भगवान क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। यदि हम अपने गुरु के आदेश का पालन करेंगे आलस में धो करके तो निश्चित रूप से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का शंका नहीं होनी चाहिए। हरे कृष्ण, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न आप जरूर सुनिएगा, आगे चल करके आप देखेंगे बहुत आनंददायक किस तरह से भगवान अदिति के गर्भ प्रकट होते हैं, उनकी प्रार्थना की जाती है। तो सारा खेल क्या है, कृष्ण भगवान भक्त होने का है और गुरु के आदेश का पालन करने का है। हरे कृष्ण। हाँ बोले, मेरा गला का असर तो नहीं पड़ा, गला मेरा बहुत खराब है।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है और एक प्रार्थना है प्रभु जी।
बोले
प्रार्थना सब जानते हैं शायद,
हाँ
थोड़ा सा व्यास आसन से आप जादू दिखाइए,
ये प्रार्थना है। ये जादू देखना चाहते हैं हम।